आज है 12 अगस्त दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर पर चर्चा के लिए आज होगी सर्वदलीय बैठक।
2008 में हमने देखा, 2010 में हमने देखा कि पार्लियामेंट में एक इजलास हुए, पार्लियामेंट कमिटीज बनाई गईं, लेकिन क्या हुआ? ये एक किस्म का धोखा हो गया, कश्मीरियों के साथ बार बार किया जाता है।
बीबीसी से खास बातचीत में रघुराम राजन ने कहा, कभी कभी खड़े किए जाते हैं विवाद।
कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीचेस जिससे मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई है, तब वित्त मंत्री ने ये कहा कि हाँ मैंने यही कहा था। तो मेरे ख्याल में कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सीज मैन्युफैक्चर होते हैं।
बांग्लादेश में हो रहे चरमपंथी हमलों और हत्याओं के बाद मंडरा रहा है विदेशी निवेश पर खतरा। और टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना पहुंचे मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सभी विपक्षी दलों की मांग को मानते हुए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दो दिन पहले राज्यसभा में भारत प्रशासित कश्मीर के हालात पर बहस में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार मुख्यधारा की पार्टियों, नरमपंथियों और अन्य संस्थानों के साथ भी राजनीतिक चर्चा शुरू करेगी। भारत प्रशासित कश्मीर में एक मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल देर रात कुछ लोगों ने भाजपा नेता ब्रजपाल देवतिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। फायरिंग में भाजपा नेता और उनके गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी के मुताबिक ब्रजपाल देवतिया पर दो अलग अलग गाड़ियों से आए लोगों ने अचानक हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया के विवादित क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यूक्रेन क्राइमिया में आग से खेल रहा है। रूस के सरकारी टीवी पर यूक्रेन के एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसे कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उसने कबूल किया है कि वो यूक्रेन की सेना का हिस्सा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों से कीव पर कोई भी खतरनाक कदम उठाने से रोकने का दबाव बनाने की अपील की है। यूक्रेन की सेना को अलर्ट कर दिया गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने ये बताया।
हाल की घटनाओं को देखते हुए मैं क्राइमिया के पास सीमा पर यूक्रेन की सेना, नेशनल गार्ड और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस को युद्ध की स्थिति के लिए उच्चतम स्तर पर अलर्ट रहने का निर्देश देता हूं। सीमा गार्ड्स को ज्यादा ध्यान देना होगा। ये थे पेत्रो पोरोशेंको के शब्द। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर अमरीका भी चिंता जाहिर कर चुका है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में एक रिजॉर्ट हुआ हिन में हुए दो बम धमाकों में एक महिला की मौत हो गई है। इस हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों में विदेशी पर्यटक भी शामिल है। पुलिस ने बताया है कि ये बम गमलों में रखे गए थे और आधे घंटे के अंतराल पर मोबाइल फोन से उड़ाए गए थे। थाईलैंड के 3 दक्षिणी प्रांतों में 2 बम धमाके होने आम बात है, जो कि माना जाता है कि इन इलाकों में चरमपंथी हमले होते रहे हैं, लेकिन थाईलैंड के पर्यटक इलाकों पर इस तरह के हमले ज्यादा नहीं देखे गए हैं। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने गई कीनियाई एथलेटिक टीम में धावकों के कोच को धोखाधड़ी के आरोप में वापस भेज दिया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। इस बैठक में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति का जायजा लेंगे और घाटी में शांति कायम करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। बुरहान वानी की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शनों की वजह से घाटी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 3,000 घायल हैं। लगातार कर्फ्यू और बंद की वजह से लोग परेशान तो हैं ही, वहीं सर्वदलीय बैठक को अलगाववादियों ने नकार दिया है। वहीं एक तबका कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कश्मीर समस्या का समाधान निकालने का तजुर्बा नहीं है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
कश्मीरी अलगाववादी गुटू ने कहा है कि नई दिल्ली में आज हो रही सर्वदलीय बैठक महज एक औपचारिकता है, क्योंकि भारत सरकार कश्मीर में हो रहे प्रदर्शनों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। कल एक मार्च के प्रयास के दौरान अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी को गिरफ्तार किया गया। मिस्टर गिलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लोग कश्मीर में अस्थिरता फैलाते हैं।
आज दिल्ली में एक मुबाइसे की मजलिस हुकूमत हिंद ने बुलाई है, लेकिन उनके जहन पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का दबाव बढ़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि कुछ ग्रुप कोई ग्रुप्स हैं जो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो आगे आएं और रेफरेंडम करें, तो आप खुद जीत जाएंगे, हमें उसमें कोई मलाल नहीं होगा।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक और नेता मीरवाइज उमर फारूक ने सर्वदलीय बैठक के लिए एक संदेश में बताया कि संयुक्त राष्ट्र में पड़े कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा।
इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। 2008 में हमने देखा, 2010 में हमने देखा कि पार्लियामेंट में एक इजलास हुए, पार्लियामेंट कमेटीज बनाई गई, लेकिन क्या हुआ? ये एक किस्म का धोखा हो गया। कश्मीरियों के साथ बार बार किया जाता है। यहाँ के लोगों को हक खुदरादियत की बुनियाद पर जब तक अपना हक नहीं दिया जाता, हमारी पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी।
गौरतलब है कि 35 दिन से कश्मीर में लगातार कर्फ्यू और बंद के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। पुलिस का कहना है कि समय के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक मुठभेड़ों की 1100 घटनाएं घटी, जिनमें 60 के करीब लोग मारे गए और 3000 से अधिक घायल हैं। घायलों में ऐसे 400 युवा हैं जिनकी आंखों में छर्रे या पैलेट्स लगे हैं। कल भी श्रीनगर में ऐसी ही एक घटना के विरोध में प्रदर्शन किए गए, जिसमें एक पुलिस अफसर ने कथित रूप से एक युवा को घर में घुसकर मार डाला।
ये मर्डर है, मर्डर। उन्होंने कत्ल किया है, यहाँ पे कत्ल। हम सारा टंगपुर आज मुतहिद होकर सड़कों पर आए, सारे लोग, इसलिए कि डीएसपी की वर्दी उतरनी ही चाहिए। हम
पिछले एक महीने में कई बार लोकसभा और राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा हुई। बुधवार को 6 घंटे तक 29 सदस्यों ने कश्मीर के बारे में सुझाव दिए। इसी सत्र के दौरान गृह मंत्री ने घोषणा की कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, ताकि कश्मीर में हालात को बहाल करने के लिए एक साझी नीति अपनाई जाए। इस बैठक से समस्या के समाधान की कितनी आशा है, मैंने पूछा विश्लेषक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कानून विभाग के हेड डॉक्टर शेख शौकत हुसैन से।
राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में ये ऐलान कर चुके हैं कि बातचीत अगर होनी है तो बस वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उससे मुतालिक होनी है, जहाँ तक इस हिस्से का ताल्लुक है इस पर कोई बात नहीं होनी। इस बयान के बाद नहीं लगता कि ऑल पार्टीज मीटिंग भी कोई खास चीज सामने ला सकती।
डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि मोदी सरकार और अपोजिशन में जो भी लोग निर्णायक पोजीशन ऊपर हैं, इन्हें कश्मीर समस्या से निपटने का कोई अनुभव नहीं है।
कश्मीर हैंडलर्स थे पुराने, जैसे जसवंत सिंह को तजुर्बा था, वाजपेयी को तजुर्बा था, या आडवाणी होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वैसे लोग भी नहीं है। और फिर अपोजिशन में अक्सरियत रीजनल पार्टीज की है, उनका नेशनल इश्यूज जो कश्मीर है नेशनल इशू, इसके बारे में ना तो कोई पॉलिसी है ना कोई होमवर्क, और खुद ये अकेले इसको हैंडल करना चाह रहे हैं और हैंडल करने के बजाय मिस्र हैंडल कर रहे हैं।
इस बीच लगातार बंद के कारण कश्मीर के लाखों छात्र और छात्राएं घरों में पड़े हैं। इनकी मदद के लिए कई इलाकों में वॉलंटियर्स ने शिक्षा शिविर बनाए हैं, जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इन बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक न कश्मीर में हालात सुधर जाए।
गौरतलब है कि बुरहान वानी की मृत्यु से छिड़े इस आंदोलन की तीव्रता अभी कम नहीं हुई है और कश्मीर के सभी 10 जिलों में तनाव है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में होने वाले सरकारी समारोहों के लिए अधिकतम सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
कश्मीर की स्थिति पर आज होगी सर्वदलीय बैठक। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहले ही राज्य में लोगों का दिल जीतने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों का जिक्र कर चुकी हैं। वहीं यूपीए सरकार के दौरान भी भारत प्रशासित कश्मीर में अलग अलग गुटों से बातचीत के लिए वार्ताकारों की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इस टीम की एक सदस्य शिक्षाविद राधा कुमार भी थी। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने प्रोफेसर राधा कुमार से पूछा कि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार जो पहल कर रही है उससे कुछ समाधान निकलेगा।
दो बार पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है, दोनों बार हमने देखा कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुई कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीजें बदलनी है और माहौल को कैसे बनाना है। उसको देखते हुए मेरे ख्याल में इस बैठक में कम से कम मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ऑल पार्टी की जो डेलीगेशन का प्रपोजल दोनों पार्लियामेंट्री डिबेट में आया है वो एक्सेप्ट होगा और सरकार तैयारियां करेगी इस डेलीगेशन को वहां जाने के लिए। ये डेलीगेशन को तो शायद एक महीने पहले जाना चाहिए था, पर अभी भी जाए तो कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि माहौल में थोड़ी सी कम भी हो पर थोड़ी सी फर्क आएगी, एक ब्रेक थ्रू की तरह मुझे लगता है हो सकता है।
जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो सर्वदलीय बैठक या जो प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात है ये एक महीने पहले उठाया गया कदम होता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते कश्मीर में। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार से कश्मीर के मामले में कुछ चूक हुई है या लगातार कुछ बड़ी गलती हो रही है?
पहली तो मुझे लगती है सबसे बड़ी गलती थी कि 2010 में जो हादसे हुए और उसके बाद एक तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई थी, एक हमारी मिशन थी इंटरलॉक्यूटर वाली और एक वो आर्मी की तरफ से भी काफी सुधार शुरू हुआ था, तो इन सब कारणों की वजह एक माहौल बना था। उस वक्त पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात शुरू होती, ये राजनीतिक जो मामला है इसको हल करने की बात उस वक्त होती तो शायद हम इस स्तर पे इस वक्त ना पहुंचते। अब ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार तो आपको दम लगा के राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा शुरू करनी ही पड़ेगी। वो मुझे लगता है इतनी जल्दी तो नहीं होगा, पर अगर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाए, लोगों को वहाँ कुछ विश्वास मिले कि फौरन ही राजनीतिक मुद्दे पे बात शुरू हो जाएगी और उसमें हर विचार के लोग हिस्सा ले पाए तो फिर मुझे लगता है हम कुछ उम्मीद कर पाएंगे। अब ये बात सही है कि इतने सालों से नहीं किया तो काफी जो पॉलिटिकल विल है इन लोगों को अब बनाना पड़ेगा।
यदि हम माने कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत प्रशासित कश्मीर जाता है और वहाँ लोगों से मुलाकात करता है, बात करता है, आपको लगता है कि जो लोकल आवाम है, स्थानीय लोग हैं कश्मीर के, वो इसका स्वागत करेंगे?
शुरुआत में तो गुस्सा, सब लोग अपना गुस्सा भी आगे बताना चाहेंगे तो माहौल तो इसमें दिक्कत होगी, पर जब हम लोगों ने पहली बार शुरुआत की थी तो उस वक्त भी शुरू में लोगों ने काफी हम पे गुस्सा निकाला, पर 3-4 महीने बाद माहौल धीरे धीरे बदला। तो यही इन लोगों को देखना पड़ेगा, एक बार जाने से काम कुछ नहीं होगा, उस पे फिर काम जारी रखना पड़ेगा।
शिक्षाविद राधा कुमार का कहना है कि कश्मीर का समाधान निकालने के लिए लगातार करनी होगी कोशिश। उनसे बात कर रहे थे संदीप सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम भारत प्रशासित कश्मीर से आपको एक विशेष श्रृंखला सुनवा रहे हैं। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद घाटी में तनाव अभी तक जारी है और लोग कर्फ्यू की वजह से अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं। ऐसे हालात में कश्मीर के लोगों पर क्या बीत रही है, बता रहे हैं श्रीनगर से जाने माने लेखक निदा नवाज।
सुबह के लगभग 5 बज चुके थे, अचानक पुलिस की गाड़ी से घोषणा हुई कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जाएगी। हम हैरान हुए, हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीने और 2 दिन की कैद की हमारी सज़ा पूरी होने को है। मेरा बेटा जल्दी से बिस्तर से निकला और मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो भी खुशी से और हैरानगी से कहने लगा, डैडी आपने सुना कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जा रही है 6 बजे से 7 बजे तक। मैंने दरवाज़ा खोला और उसको देखने लगा। उसकी आंखों में खुशी की ऐसी चमक थी जैसे उसने अचानक ईद का चांद देखा हो। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। वो फिर कहने लगा, डैडी मुझे कुछ स्नैक्स और बिस्किट्स खरीदने हैं, आज 1-2 मुर्गे भी लाएंगे, अब कर्फ्यू उठाया जाएगा और हमारे एग्जाम्स का फिर से डेट शीट निकलेगा। हम बड़ी बेसब्री के साथ 6 बजे की प्रतीक्षा करने लगे। मेरी बीवी एक लंबी सूची बनाने लगी। वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी, हफ्ते भर के लिए सब्जियां लाके रखूंगी, मसाले भी कब के ख़त्म हो चुके हैं, 15 दिनों से साबुन और शैम्पू के बगैर नहा रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, टूथपेस्ट भी कब का ख़त्म हो चुका है, अब खाली ब्रश से दांतों को साफ करती हूँ कि कहीं आदत ही न छूट जाए। मेरे सिर में अधिकतर दर्द लगने लगता है, पिछले 20 दिनों से ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ले रही हूँ। मैं आज पूरे 1 महीने के लिए दवाई लाके रखूँगी। बड़े बेटे को 11 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दुबई जाना है, उसने भी शॉपिंग करनी है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भरे पड़े हैं, साबुन के बिना धोएंगे कैसे। मैं भी सोच रहा था कि 1 महीने से न ही बाल कटवाए हैं और न ही शेव किया है, चलो मैं आज पहले नाई की दुकान पर जाऊंगा, मगर मगर एक घंटे की कर्फ्यू डील में अगर नाई ने दुकान खोली भी तो वहाँ काफ़ी रश होगी। अभी 6:10 थे, हम सब घर के आंगन में आ चुके थे। हमारी हालत वही थी जो किसी दौड़ में हिस्सा लेने वाले लोगों की होती है कि कब सीटी बजे और वो निकल पड़े। अब 6 बज चुके थे, हम बाज़ार की तरफ चलने के नाम पर दौड़ रहे थे। बाज़ार का दृश्य अजीब था, जैसे पूरे शहर को अचानक कैद से रिहाई मिल गई हो। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब दुकानों पर खड़े थे। देखते ही देखते कर्फ्यू डील का 1 घंटा ख़त्म हो चुका था। लोग पूरी शॉपिंग नहीं कर पाए थे। पुलिस की गश्ती गाड़ी एक बार फिर कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा कर रही थी। मेरी आंखों के सामने दर्दनाक दृश्य था। कुछ लोग जूते हाथों में थामे दौड़ रहे थे। मैं हाँफते हाँफते घर पहुँच गया। बीवी ने सब्जियाँ लाई थीं लेकिन वो सड़ चुकी थीं। मसाले भी लाए गए थे लेकिन बाकी सभी चीज़ें वो खरीद नहीं पाई थी। छोटे बेटे नीरज के चेहरे की खुशी एक बार फिर विलीन हो चुकी थी। बड़ा बेटा भी परेशान था। हम एक बार फिर कर्फ्यू की आड़ में कैद हो चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि राजनीति और धार्मिक कट्टरवाद के बीच हम आम लोग कब तक कर्फ्यू की ये कैद सहते रहेंगे।
कर्फ्यू में ढील ऐसी लगती है जैसे कैद से आज़ादी मिली हो। ये थे श्रीनगर से जाने माने लेखक निदा नवाज। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाले आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि कभी कभी विवादों को खड़ा किया जाता है। बीबीसी से विशेष बातचीत में रघुराम राजन ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं और कभी उनसे ये नहीं पूछा गया कि उन्होंने मीडिया में कोई बयान क्यों दिया। रघुराम राजन का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। हमारे मुंबई सहयोगी समीर हाशमी ने रघुराम राजन से विशेष बातचीत की।
डॉक्टर राजन, 3 साल की बात करें जो आपका टर्म रहा है आरबीआई में, इसमें काफ़ी जो चीज़ें आपने कही हैं उसके ऊपर काफ़ी अटेंशन रहा है। हाल ही में आपके ऊपर थोड़े पर्सनल अटैक्स हुए और लोगों का ये मानना था जो आपकी आउटस्पोकननेस थी, जो आप इशूज़ पर बोलते थे खुल के, उसकी वजह से सरकार जो थी काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी और इस वजह से वो कीन नहीं थे आपको सेकेंड टर्म देने के लिए।
मेरे जो कॉन्वर्सेशंस हैं सरकार के साथ काफ़ी अच्छी रही हैं, या तो प्रधानमंत्री के साथ या वित्त मंत्री के साथ या गवर्नमेंट ऑफिशल्स के साथ कॉर्डियल रहे हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपने पब्लिक में ये क्यों कहा है। और कभी कभी जब कंट्रोवर्शियल स्पीचेस, जिससे मीडिया कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, तब कभी कभी वित्त मंत्री ने ये कहा है कि हाँ मैंने यही कहा था पिछले हफ्ते। या तो मेरे ख्याल में कभी कभी कंट्रोवर्सीज मैन्युफैक्चर होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग हमेशा तालियां बजाते थे हमारे नीति सुन के, या जो हमने इंटरेस्ट रेट्स के साथ किया है या जो हमने बैंक क्लीन अप के साथ किया है। हाँ, कई लोग तो नाराज़ हुए थे इन चीज़ों के साथ। ऑपोजिशन तो हमेशा रहेगी, अगर आप ठीक काम करेंगे तो ऑपोजिशन तो होगी। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। इसमें किसका प्रभाव डिसीजन पे था मुझे नहीं मालूम है।
लेकिन जो आपके पर्सनल अटैक्स हुए उस दौरान सरकार ने खुल के आपको डिफेंड नहीं किया, चाहे वो वित्त मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे।
मेरे ख्याल में एक तरीके से तो डिफेंड किया था। ये सेकेंड टर्म का जो मामला है, मेरे ख्याल में डिस्कशंस चल रहे थे और उन डिस्कशंस पे ये जो बाहरी जो आलोचना लोग कर रहे थे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वो अलग सा डिस्कशन चल रहा था और मेरे कई कंस्ट्रेंट्स थे, गवर्नमेंट के कई इच्छाएं होंगी और अंत में कोई अग्रीमेंट हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन उस पे कोई मोटिवेशन या कुछ लगाना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं।
आपने अपने जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए उसमें आपने ये कहा है कि आरबीआई ने जो है रेट कट, जितना रेट कट किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बैंक्स वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, ग्राहक को। उसकी क्या वजह है, क्योंकि आरबीआई ने तो 150 बेसिस पॉइंट्स काटा है।
वैसे बैंकों ने भी काफ़ी काटा है लेकिन पूरा पास थ्रू अभी तक नहीं हुआ है। एक तो मेरे ख्याल में बैंक्स भी ये सोच रहे हैं कि इतना जल्दी डिपॉजिट रेट्स काटेंगे तो शायद डिपॉजिटर्स कहीं और जाएंगे, शायद सोना खरीदेंगे या वो स्मॉल सेविंग्स में डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिटर्स के कारण बैंक्स रेट नहीं काट रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी तो क्रेडिट का डिमांड काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं। जब वो निवेश करना शुरू करेंगे मेरे ख्याल में उनको ऋण देने में काफ़ी कंपटीशन बढ़ेगी, और जब वो कंपटीशन बढ़ेगी तो बैंक्स लोन रेट काटेंगे। तब तक मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा।
पर क्या उनको थोड़ा और काटना चाहिए, मैं पूछना चाह रहा था।
काटना चाहिए लेकिन उनके भी डिफ़िकल्टीज हैं, उनको आमदनी चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड हैं। आप देख रहे हैं कि उनका क्रेडिट बढ़ नहीं रहा है लेकिन उनके डिपॉजिट्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वक्त की बात है, करेंगे देखते हैं। पहले तो वित्त मंत्री से आदेश आता था कि काटो और तब काटते थे, अभी मेरे ख्याल में मार्केट से आदेश आएगी कॉम्पिटिशन के माध्यम से कि आपको काटना चाहिए वरना कोई नहीं आएगा आपके पास ऋण के लिए।
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बात कर रहे थे मुंबई संवाददाता समीर हाशमी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और सब अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी है। हरिता
जी, आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में जो सबसे मुख्य खबर है, जिसकी चर्चा है, वो है दिल्ली में एक दुर्घटना की। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया था और 1.5 घंटे तक करीब वो सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि 90 मिनट जिन्होंने दिल्ली को शर्मसार किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 402 गाड़ियां, एक पुलिस वैन, सब उस सड़क से गुजरे लेकिन किसी ने भी 35 वर्षीय मतीबुल की मदद नहीं की और वो वहीं सबने उसे मरता हुआ छोड़ दिया। और नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है जिसके मुताबिक सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम और सम्मान दिया जाएगा। तो ये खबर है जो लगभग सभी अखबारों में मुख्य तौर पर छाई है। इसके अलावा द पायनियर ने एक खबर छापी है कि भारत के खेल मंत्री रियो ओलंपिक में गए हैं और उन्हें वहाँ चेतावनी दी गई है कि उनका एक्रेडिटेशन रद्द किया जा सकता है। उनके साथ जो लोग गए हुए हैं जिनका एक्रेडिटेशन नहीं है, वो कई जगहों पर घुसने की कोशिश करें और कुछ अभद्र बर्ताव किया गया, कुछ इस तरह की वजह दी गई है और इसीलिए उन लोगों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें वापस भेजा जा सकता है। तो ये भारत के खेल मंत्री की बात है। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है कि आज कश्मीर के मुद्दे पर जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसी से कुछ जुड़ा है ये मामला। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को चेतावनी दी है कि भारत प्रशासित कश्मीर में स्थानीय चरमपंथी और अलगाववादी नेता के इशारे पर पाक दिवस मनाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान के झंडे फहराने की योजना है और इसे रोकने के लिए एक बैठक कल हुई है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से उन्नति करने वाले बांग्लादेश के आर्थिक हालात इन दिनों बहस का मुद्दा है। कुछ दिनों पहले तक दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इस अर्थव्यवस्था पर अब चरमपंथी हमलों और हत्याओं के साए में कम होते विदेशी निवेश का खतरा मंडरा रहा है। ढाका से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुबह हो या शाम, स्वपन कुमार दास का ध्यान खबरों से हटता ही नहीं। ढाका में अपनी 2 गारमेंट फैक्ट्रियों से इनका 1.5 करोड़ डॉलर का सालाना व्यापार होता है, लेकिन 2 दशक में पहली बार इन्हें अपने 400 कर्मचारियों के भविष्य की चिंता सता रही है। स्वपन ने बताया,
कोई कोई बायर आदमी लोग इधर आने के लिए थोड़ा डर रहता है उनका, सो उन्होंने मीटिंग के लिए फैक्ट्री ओनर को बुलाया उनका देश में। कोई कोई फैक्ट्री ओनर जो अगले बढ़ाने के लिए डिसीजन किया था वो थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप कर दिया।
देश से होने वाले आयात में बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा 80% है। 40 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार इस पर निर्भर है। चीन के बाद बांग्लादेश का नंबर आता है उन देशों में जो अमेरिका और यूरोप में रेडीमेड कपड़ों की सप्लाई करते हैं। 2013 में राना प्लाजा बिल्डिंग के गिरने से देश की गारमेंट इंडस्ट्री की साख को धक्का लगा था। हाल के चरमपंथी हमलों ने इसे करारी चोट पहुंचाई है। बांग्लादेश गारमेंट्स बायर्स एसोसिएशन के सचिव अमीनुल इस्लाम भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
हमें इस बात पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी कि गारमेंट्स के ऑर्डर धीमे या रद्द तो नहीं हो रहे हैं। अगर गुलशन कैफे जैसा एक और हमला हो जाता है और कोई निवेशक अपनी फैक्ट्रियां दिल्ली या हांगकांग में शिफ्ट कर देता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में 7% तक बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसे दक्षिण एशिया में खासा बेहतर बताया गया था। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, जिससे देश की पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ। पिछले वर्ष तक 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा आमदनी गारमेंट्स के निर्यात से हो रही थी, लेकिन दो चरमपंथी घटनाओं के बाद प्राथमिकताएं बदल रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री कमाल हुसैन,
जो यूथ कर रहे हैं सर, उनको ये समझ भी नहीं है कि अपने मुल्क अपने समाज में ये बहुत इसको नुकसान कर रहे हैं। जो आपने कहा डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करेगा, यहाँ लोग जो आते थे काम के लिए बिजनेस के लिए, वो एटलीस्ट अब फिलहाल तो नहीं आएंगे।
देश की सरकार के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आशंकाओं के इस माहौल में पुराने वादे निभाए जाएं। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के मुस्तफिजुर रहमान बताते हैं,
बाहर के देशों में बांग्लादेश की छवि अभी भी बिजनेस के अच्छे माहौल की है। अगर हिंसा की घटनाएं आगे भी होती रहीं, तो इतने वर्षों की मशक्कत से कमाई गई साख और भरोसा सब पर पानी फिर जाएगा।
ढाका में रेडीमेड गारमेंट्स की भरमार पहले भी रहती थी, आज भी है, लेकिन बांग्लादेश की 5,000 से भी ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियों में काम की रफ्तार कैसी रहेगी, ये इस पर निर्भर है कि देश में शांति कितनी रहती है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, ढाका।
और अब बात रियो ओलंपिक की।
बीबीसी ओलंपिक रियो अपडेट।
सीधे चलते हैं रियो, जहां मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम। नॉरिस, ये बताइए कि रियो से कल भारत के लिए अच्छी खबर आई, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो हैं मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खेले दोनों, और खासतौर से रोहन बोपन्ना ने बहुत शानदार सर्विस की और दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। हालांकि वो पहले कभी साथ नहीं खेले हैं मिक्स डबल, लेकिन बहुत ही अच्छा खेले, और लेकिन फिर भी मैच के बाद दोनों ने माना कि वो एक टफ मैच यानी मुश्किल मैच था, और लेकिन फिर भी वो अच्छा खेल के उसे निकाल गए। लेकिन अगला मैच जो होगा वो और भी मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि उसमें एंडी मरे, ब्रिटेन के एंडी मरे और हैदर वॉटसन जो है वो डबल्स की विंबलडन चैंपियन है। तो मुझे लगता है कि अगला मैच जो है वो काफी मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि ये मैच जो जीता उन्होंने दिन के आखिर में, बिल्कुल उस वक्त जीता जब शुरू से जो दो तीन दिन की मायूसी चल रही वो आज फिर बरकरार रही। सवेरे से मायूसी थी, आर्चरी में फ्लॉप हो गए भारतीय लोग, और उसके बाद बॉक्सिंग में शिवा थापा हार गए थे, तो इसलिए बड़ा एक नाउमीद सी जो फैली हुई थी वो शाम तक होते होते सही हो गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो सानिया की और रोहन बोपन्ना की जीत है वो खाली टेनिस की जीत नहीं है, पूरे आज कम से कम आज के अगर संदर्भ में बात करी जाए तो भारतीय खेमे की जीत थी आज की वो।
जी, अगर महिला हॉकी के मुकाबले की बात की जाए तो वहां पर भी मायूसी हाथ लौटी।
हाँ, वो हॉकी में यूएस से हार गए हम, और वो कोई खास मैच अच्छा नहीं था। हालांकि महिला टीम अच्छी कर रही, लेकिन 36 साल के बाद ओलंपिक में आए हैं वो, 1980 में जीतने के बाद और पहली बार ये 36 साल में आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अनुभव की कमी है अभी लड़कियों में, कम से कम ओलंपिक लेवल पे, इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद करना कम से कम अच्छी टीम से मेरा ख्याल है अन्याय होगा।
जी, रियो से खेल की पूरी रियो ओलंपिक की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रियो से नॉरिस प्रीतम। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सभी विपक्षी दलों की मांग को मानते हुए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल देर रात कुछ लोगों ने भाजपा नेता ब्रजपाल तेवतिया पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें भाजपा नेता और उनके गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के 70 सदस्यों ने नेशनल कमेटी के चेयरमैन को खत लिखकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की दौड़ में समर्थन ना दें। रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया के विवादित क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश का आरोप लगाया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। विश्व भारती में चर्चा करेंगे। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के कुछ विधायक शामिल हुए बीजेपी में, और होगी वॉशिंगटन डायरी भी। लेकिन नमस्कार भारत में बस इतना ही। तो आपसे मुलाकात दोबारा होगी 8 बजे विश्व भारती में।